Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। हिंदुस्तान में उद्योगों के नष्ट होने के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए। काम की तलाश में कई लोगों ने दक्षिण अफ्रीका का रुख किया। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 29वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। दोस्तों, सैकड़ों साल पुराने जिस इतिहास और जिन घटनाओं का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, आज भी वो किसी न किसी रूप में घट रही हैं और हम खुद उनका अनुभव कर रहे हैं। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम दुनिया को बदलें? तो हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान के उद्योगों की। ये उद्योग नष्ट हो गए जिसके बाद लाखों लोग बेरोजगार हुए और काम की तलाश शुरू हो गई। बहुत से लोग दक्षिण अफ्रीका गए। इन लोगों की स्थिति काफ़ी ख़राब थी क्योंकि गोरे लोग वहाँ भी इनके अधिकारों को अपने बूटों तले रौंद रहे थे। अप्रैल 1893 में एक भारतीय युवा वकील ने दक्षिण अफ्रीका का रुख किया ताकि वहां अपने देशवासियों के अधिकारों का बचाव कर सके। भारतीय युवा वकील ने बंबई से समुद्री यात्रा शुरू की और वो दक्षिण अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह डरबन पहुंचा। वहां से उसने चार्ल्सटन शहर जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। उसने ट्रेन में सफ़र के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा। जैसे ही उसने अपनी रिजर्व सीट पर बैठना चाहा, तुरंत टीटी वहां पहुंचा और उसने उसे बैठने से रोक दिया। टीटी ने कहा कि तुम इस कोच में नहीं बैठ सकते और तुम सिर्फ उस कोच में सफ़र कर सकते हो जिसमें सामान रखा जाता है। वकील ने कहा, मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। टीटी ने फिर झल्ला कर कहा कि तुम गोरे नहीं हो, इसलिए तुम्हें इस कोच में बैठने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस युवा वकील ने जब हार नहीं मानी तो टीटी ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस अधिकारी ने वकील का कंधा दबोचा, उसे उसकी सीट से उठाया और ट्रेन के बाहर फेंक दिया। ये युवा वकील काफ़ी देर तक कड़ाके की सर्दी में प्लेटफार्म पर अगली ट्रेन का इंतज़ार करता रहा, लेकिन फिर भी उससे यही कहा गया कि तुम्हें सामान ढोने वाले कोच में बैठना होगा। वकील अपनी शिकायत लेकर स्टेशन मास्टर के पास पहुँचा। स्टेशन मास्टर ने पुलिस अधिकारी को सही ठहराया, लेकिन वकील से कहा कि तुम चूंकि पढ़े लिखे आदमी लगते हो, इसलिए तुम्हें थर्ड क्लास में सफ़र की इजाज़त दी जा सकती है। जब ये युवा चार्ल्सटन स्टेशन पर उतरा तो उसने बग्घी में बैठकर अपनी मंजिल पर पहुंचने का इरादा किया, लेकिन बग्घी वाले ने कहा कि क्योंकि वो गोरा नहीं है, इसलिए वो बग्घी के अंदर सीट पर नहीं बैठ सकता, बल्कि उसे पीछे पायदान पर खड़ा होना पड़ेगा। युवा वकील बग्घी में बैठ चुका था, इसलिए उसने कहा कि अब वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये सुनकर बग्घी वाले ने हमला कर दिया। आखिरकार वकील को खड़े होकर आगे का सफ़र तय करना पड़ा। युवा वकील जब अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंचा तो उसने कुछ दूर फुटपाथ पर चलने का इरादा किया, लेकिन अचानक एक पुलिसकर्मी ने उस पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए और फुटपाथ से उठाकर सड़क पर फेंक दिया। वकील के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब यहाँ क्या हुआ। कुछ देर बाद उसकी समझ में आया कि फुटपाथ पर भी सिर्फ गोरों को चलने का हक है और भारतीय और अफ्रीकी फुटपाथ पर नहीं चल सकते। लेकिन इन घटनाओं से ये युवा वकील निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज़ों की नाइंसाफ़ी के खिलाफ और अपने हम वतनों के अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। मगर उसने इस सफ़र से सबसे बड़ा सबक ये लिया कि भारतीयों को अपने ही देश में सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार हासिल होना चाहिए ताकि उन्हें दक्षिण अफ्रीका या दूसरे देशों में प्रवासन के लिए मजबूर ना होना पड़े। ये घटना एक बड़े आंदोलनकारी के उभरने का कारण बनी जो आगे चलकर महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हुआ। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से 8 साल पहले भारत में नेशनल कांग्रेस का गठन हो चुका था। इससे पहले तक अंग्रेजों ने भारत को छोटी बड़ी 601 स्थानीय सरकारों में बांट दिया था। ये सरकारें अंग्रेजों से अपनी वफादारी साबित करने की दौड़ में लगी रहती थीं। इसी वजह से उनके बीच मतभेद बहुत गहरे होते जा रहे थे, जिसका अंग्रेज फायदा उठा रहे थे। लेकिन सभी अंग्रेज इस स्थिति से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि हद से ज़्यादा भारतीयों का अपमान खतरनाक हो सकता है। उन्हें डर था कि गरीबी और भुखमरी के साथ अपमान कहीं फिर से भारतीयों को आंदोलन करने पर मजबूर ना कर दे। इन्हीं लोगों में से एक शख्स का नाम एलन ह्यूम था। ह्यूम ने अपने अंग्रेज साथियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुम भारतीयों की बातें नहीं सुनोगे तो तुम उनकी स्थिति से अनभिज्ञ रहोगे और एक दिन 1857 की तरह आश्चर्यचकित रह जाओगे। उसने सुझाव दिया कि चयनित भारतीयों में से कुछ लोगों का चयन संसद के लिए किया जाना चाहिए और भारत के बेहतर प्रशासन के लिए ब्रिटिश सरकार को सुझाव पेश किया जाना चाहिए। इससे भारत के लोगों को लगेगा कि उन पर ध्यान दिया जा रहा है और उनकी बातें सुनी जा रही हैं। एलन ह्यूम की जिद आखिरकार सफल हुई और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को संसद में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 2000 लोगों की उपस्थिति में मुंबई में आयोजित किया गया। इस बैठक में सभी सदस्यों ने इंग्लैंड के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा की और बड़ी विनम्रता और सम्मान के साथ ब्रिटिश सरकार से भारत के लोगों की कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा। कांग्रेस का मुख्य अनुरोध कार्यालयों का भारतीयकरण था। उसकी मांग थी कि इन कार्यालयों में ब्रिटिश अधिकारियों के स्थान पर भारतीय युवाओं को काम मिलना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के सदस्यों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित कार्यालयों की व्यवस्था भारत और उसके लोगों को नष्ट कर रही है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन कार्यालयों के प्रबंधक और कर्मचारी भारतीय हों या ब्रितानी। जैसे जैसे समय बीतता गया कांग्रेस के सदस्य उतने ही अधिक साहसी होते गए और अधिक साहसी लोग इससे जुड़ते गए। अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी इस कांग्रेस के स्थायी सदस्य बन गए। आगे चलकर कांग्रेस ने सेना और प्रशासन में ब्रिटिश अधिकारियों के उच्च वेतन का विरोध किया और फिर भारत से इंग्लैंड को सोने और चांदी के निर्यात का विरोध किया। साल दर साल विरोध और भी तीव्र होता गया, यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर से स्वतंत्रता के सुर भी सुनाई देने लगे। 1857 की क्रांति पूरी तरह सफल नहीं रही थी क्योंकि अंग्रेजों के दिमाग में इसी क्रांति का खौफ था जो उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की अनुमति दे दी थी और राष्ट्रीय कांग्रेस धीरे धीरे भारतीय आज़ादी का झंडा बुलंद कर रही थी। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इंग्लैंड को दुनिया भर के विभिन्न मोर्चों पर एक कठिन युद्ध का सामना करना पड़ा, एक ऐसे युद्ध में जिसमें अधिक धन और अधिक सैनिकों की जरूरत थी। भारत वही देश था जिसके बारे में अंग्रेजों ने सोचा था कि उन्हें यहाँ से सबसे अधिक मदद मिल सकती है। लेकिन सवाल ये था कि आज़ादी हासिल करने की बात सोच रहे भारतीयों को इंग्लैंड के लिए अपना धन और जीवन दांव पर लगाने के लिए कैसे तैयार किया जाए। अंग्रेज वर्षों से भारतीयों के बीच रह रहे थे, इसलिए उनकी संस्कृति और संस्कारों को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने भारतीयों को युद्ध में शरीक करने के लिए एक भारतीय चाल का इस्तेमाल किया। भारतीय कभी कभी गायों और भैंसों का दूध दूहने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल किया करते थे। जब कोई गाय या भैंस बच्चे को जन्म देती थी तो उसे काफ़ी दूध उतरता था, लेकिन अगर बछड़ा या लवारा मर जाता था तो उनका दूध उतरना कम हो जाता था। इस स्थिति में भारतीय जानवर को धोखा देने के लिए बछड़े का पुतला बनाते थे और उसे दूध दूहने के वक्त गाय के सामने लाकर खड़ा कर दिया करते थे। गाय ये देखकर कि उसका बच्चा उसके पास से ज़्यादा दूध देती थी, अंग्रेजों ने भी इसी चाल का इस्तेमाल करते हुए भारतीयों को युद्ध के लिए तैयार किया। युद्ध की शुरुआत में ब्रिटिश कैबिनेट में भारतीय मामलों के मंत्री ने कहा, सरकार हिंदुस्तान में एक खुद मुख्तार और जिम्मेदार सरकार के गठन के लिए प्रतिबद्ध है। ये घोषणा सुनकर भारतीयों में ब्रिटेन की ओर से लड़ने के लिए जोश भर गया, क्योंकि युद्ध के अंत में उन्हें आज़ादी का तोहफा मिलने की उम्मीद हो गई थी। शुरुआत में इंग्लैंड ने युद्ध पर खर्च करने के लिए उपहार के नाम पर भारत की संपत्ति से 100 मिलियन लीरा लिया। उसके बाद भारतीयों से 120 मिलियन लीरा वसूल किया। इस युद्ध में लगभग 1.5 लाख भारतीय युवा स्वेच्छा से इंग्लैंड के लिए लड़ने के लिए तैयार हुए। उन्होंने फ्रांस, फिलिस्तीन, सीरिया, इराक और बर्मा में लड़ाई में भाग लिया। यूरोप में भारतीयों ने बड़े साहस के साथ लड़ाई लड़ी और जर्मनों को पीछे हटने के लिए मजबूर करने वाले वे पहले समूह बन गए। उन दिनों जब भारतीय सैनिक युवा युद्ध के मोर्चे पर जा रहे थे तो देश में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके महात्मा गांधी स्वेच्छा से इंग्लैंड की मदद के लिए आ गए। उन्होंने और उनके दोस्तों के एक समूह ने अंग्रेजों से सेना की चिकित्सा इकाई पर काम करने और युद्ध में घायलों की मदद की अनुमति मांगी। उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इसके लिए पहले उन्हें प्रशिक्षित किया जाना था। ये प्रशिक्षण चिकित्सा और सैन्य दोनों विभागों में आयोजित किया गया था। कोर्स शुरू होने के कुछ समय बाद गांधी जी ने देखा कि ब्रिटिश अधिकारी उनके और उनके दोस्तों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं। उन्होंने अधिकारी से अपना व्यवहार बदलने का अनुरोध किया, लेकिन अंग्रेज अधिकारी ने जोर देकर कहा कि जैसा उसे सही लगेगा वो वैसा ही करेगा। गांधी जी ने ब्रिटिश कैबिनेट में भारतीय मंत्री को पत्र लिखा कि उन भारतीयों का सम्मान किया जाए जो सेना में इंग्लैंड की स्वेच्छा से मदद कर रहे हैं, लेकिन भारतीय मंत्री ने सैन्य अधिकारियों का समर्थन किया और उन्हें सैन्य कानून लागू करने वाला बताया। गांधी जी ने विरोध स्वरूप अपने मित्रों से खेल और सैन्य प्रशिक्षण जैसे कुछ शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग न लेने को कहा। जब ब्रिटिश अधिकारी को भारतीयों के विरोध का सामना करना पड़ा तो उसने उनमें से कुछ से वादे किए और स्वयंसेवकों के समूह को अलग कर दिया। जब घायलों का पहला समूह सेना अस्पताल पहुंचा तो कमांडर केवल उन्हीं लोगों को अस्पताल ले गया जिन्होंने उसके वादों पर भरोसा किया था। गांधी और बाकी स्वयंसेवक प्रशिक्षण शिविर में ही रह गए। दरअसल जिन लोगों ने कमांडर का अपमान बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया उन्हें स्वयंसेवक समूह से निष्कासित कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1918 में इंग्लैंड और उसके सहयोगियों की जीत के साथ समाप्त हुआ। हर कोई जानता था कि इस जीत में भारतीयों की कितनी बड़ी भूमिका थी। भारतीयों ने इस जीत को अपनी सफलता माना और इंग्लैंड द्वारा अपने वादों को पूरा करने की उम्मीद जताई, लेकिन भारत में ब्रिटिश वायसराय के शब्दों ने उन्हें बहुत निराश किया। उसने कहा, भारतीयों को सरकार चलाने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है और उन्हें स्वायत्त सरकार चलाने वाले लोग मिलने में कम से कम 2 पीढ़ियां लग जाएंगी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि हमारी सरकार हमेशा के लिए भारत का शासन चलाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह आवश्यक है कि ब्रिटिश शासन का एक ढांचा हमेशा भारत में बना रहे। अब यहां भारतीयों को बछड़े का पुतला वाली चाल का आभास हुआ, लेकिन अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। भारतीयों को ये विश्वास नहीं था कि अंग्रेज उन वादों को इतनी आसानी से तोड़ देंगे जिनका उन्होंने युद्ध की शुरुआत में स्पष्ट रूप से ऐलान किया था। भारतीयों को आज़ादी और स्वायत्तता देने के बजाय ब्रिटिश सरकार ने कानून पारित किया जिसके आधार पर किसी भी तरह के विरोध की आवाज़ पर रोक लगा दी गई। ब्रिटिश सरकार विरोध करने वाले भारतीयों को गिरफ्तार कर सकती थी और उन्हें बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक जेल में रख सकती थी। कैदियों को न तो वकील रखने का हक था और न ही उन्हें अपील करने का अधिकार था। ब्रिटेन के खोखले वादों से आहत भारतीयों ने अपनी लड़ाई को नई धार देने और नए ढंग से लड़ाई लड़ने के लिए फैसला किया। उन्होंने महात्मा गांधी से सत्याग्रह नामक नई पद्धति सीखी। अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत के कई क्षेत्रों के किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में मदद की थी और उनके अधिकारों की रक्षा की थी। इन विरोध प्रदर्शनों में उनकी उपस्थिति से भारत के लोगों के बीच उनकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता बढ़ गई। उन्होंने लोगों से नए ब्रिटिश कानून के खिलाफ सत्याग्रह या अहिंसक संघर्ष में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में लोगों को शोक मनाने के लिए आमंत्रित किया। शोक मनाने और काले झंडे फहराने से जाहिरी तौर पर ब्रिटिश सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब भारत के मुसलमानों, हिंदुओं और अन्य धर्मों के अनुयायियों ने शहरों और गांवों में इन समारोहों में भाग लिया तो उनकी एकता और एकजुटता ने अंग्रेज़ों को आश्चर्यचकित कर दिया। सत्याग्रह ने अपना पहला परीक्षण अच्छी तरह से पास कर लिया था और भारतीय और ब्रिटिश दोनों आने वाले वक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंग्रेजों ने यह मान लिया था कि सत्याग्रह आंदोलन को रोका नहीं जा सकेगा, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह भारतीयों को क्रोधित करने और हिंसा के लिए भड़काने की कोशिश की। पूरे भारत में सार्वजनिक शोक मनाए जाने के कुछ दिनों बाद भारतीय ग्रामीणों का एक समूह पंजाब राज्य के एक बाग में एक धार्मिक समारोह के लिए इकट्ठा हुआ। लगभग 10,000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा थे। जब पंजाब में ब्रिटिश सैन्य बल के कमांडर को बाग में इन लोगों की उपस्थिति के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिकों को बाग को चारों ओर से घेर लेने का आदेश दिया। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि ये लोग एक धार्मिक समारोह के लिए बाग में एकत्रित हुए हैं। उसने ऐलान किया कि नए कानून के अनुसार सरकार के विरोध में प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है, इसलिए उसने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। चारों ओर से गोलियों की बौछार होने लगी। लोग चार दीवारी वाले इस बाग में जान बचाने के लिए उसके दरवाजे की ओर भागे, लेकिन सैनिकों ने दरवाजे बंद कर दिए थे और जो कोई भी बाग से बाहर निकला उसे गोलियों से भून डाला। 10 मिनट तक गोलीबारी जारी रही। इन 10 मिनटों में लगभग 1200 लोग मारे गए और 3600 घायल हो गए। अंग्रेज कमांडर जनरल डायर ने किसी को भी घायलों की मदद करने की इजाज़त नहीं दी। 1 घंटे बाद ब्रिटिश विमानों ने मारे गए ग्रामीणों के खेतों पर बमबारी की। बाग के बाहर सैनिक लोगों को कोड़े मार रहे थे और चिलचिलाती धूप में उन्हें बड़े धातु के पिंजरों में बंद कर रहे थे। जब इस नरसंहार की खबर भारतीयों के कानों तक पहुंची तो वे क्रोधित हो गए और कई युवाओं ने इसका बदला लेने का फैसला किया। हालांकि गांधी जी जानते थे कि अंग्रेजों का क्या मकसद था, इसलिए उन्होंने लोगों को शांत रहने का आह्वान किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंजाब के ब्रिटिश कमांडर के बारे में ब्रिटिश सरकार से शिकायत की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जनरल को अपना कर्तव्य निभाने के लिए पुरस्कार देने का फैसला किया। उसे 1 रत्न जड़ित तलवार और 1.5 लाख लीरा इस नरसंहार के लिए उपहार में दे दिया गया।